ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सब आए। तो आज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय 36वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तुयते सत्कथाशु। मुक्त संगे पुनः पुनः यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तुयते यत् सत्कथासु। मुक्त संगे पुनः पुनः यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तुयते सत्कथासु। मुक्त संगे पुनः पुनः यत्र जहां नारायण भगवान नारायण साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान न्यासी नाम सन्यासियों का गति ही परम लक्ष्य समस्तुयते पूजा की जाती है सत्कथासु अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा। मुक्त संग ही भव कलमश से मुक्त व्यक्तियों द्वारा पुनः पुनः बारंबार अनुवाद तथा तात्पर्य श्ल प्रभुपाद द्वारा श्ल प्रभुपाद की जाए। जहाँ भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक, एक बार और दोहराइए इसका अनुवाद। जहां भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है वहां भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य, मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति में वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि देवतः समत्वेनैव विक्षेत सपाषंडी भवेत् ध्रुवम्। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे पाषंडी कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है, तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11:5-32 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, कृष्णावर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेत यजंती ही सुमेधशः। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही मिला है, और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान और नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान और नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासी नाम गति ही, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। इसीलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है, वह तुरंत निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है, तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान ने ईर्ष्या वैर करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगते हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देते हैं, तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुवैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का, जैसा ये प्रसंग में हम सुन रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना प्रचेताओं ने भगवान के लिए कर रहे हैं प्रचेतागण। एक दो दिन पहले आपने भक्ति गौर नारायण महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा किया था, तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम की उदासीश। कहते हैं कि भक्तों के संग के समान किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की प्राप्ति या मोक्ष की तुलना भी नहीं की जा सकती। और फिर कल के श्लोक में, कल का श्लोक का अनुवाद था, जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं ना किसी कुंठा या भय के ग्रस्त होते। कितनी सुंदर बात है कि जब भक्तों का कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हमें वैर भाव खत्म हो जाता है, एक दूसरे के प्रति वैर भावना और भौतिक तृष्णा भी खत्म हो जाती है। उसका कारण क्या है आज के श्लोक में बता रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं तो वहां पे भगवान नारायण उपस्थित हो जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम जैसे भी भगवान का कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जब हम कीर्तन करते हैं तो वहां पे साक्षात भगवान नारायण उपस्थित हो जाते हैं। और जब भगवान नारायण उपस्थित हो जाएंगे तब तो हर तरह का सारे जीवात्मा शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी सब जितना ही सब वैर काम ये सब का क्या कारण है, क्योंकि हमारे अंदर जो गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है, मल है। लेकिन जब भगवान का दर्शन करने से सब खत्म हो जाता है, तो वैसे जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, तो साक्षात भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और इसीलिए हमारे सारी भौतिक कलमश नष्ट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान नारायण किस रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया कि क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु विशेष भगवान के अवतार है, वैसे तो वह अवतार ही स्वयं है, भगवान कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। एक बार प्रभुपाद जी दीक्षा ले रहे थे, होता ना इंटरव्यू, तो दीक्षा लेने टाइम इंटरव्यू में किससे पूछ रहे थे कि हुई चैतन्य महाप्रभु, तो ने कहा चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, फेल, बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है, अवतार नहीं है, इसे भगवान कृष्ण अवतार नहीं है। एते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति योगे योगे। श्रीमद भागवतम का जो तीसरे पहला स्कंद तीसरे अध्याय का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है, अवतारी है, वो कोई अवतार नहीं है। साधारणतः भारत में या हर जगह लोग क्या समझते हैं कि विष्णु जी के बहुत अवतार हैं, उनमें से कृष्ण भी एक अवतार है, ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, वही सारे अवतार के स्रोत हैं। विष्णु, राम जी, नरसिंह जितने अवतार हैं सब कृष्ण के ही विस्तार हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वैसे साधारण लोग के लिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन हम भक्तों को समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। राधा भाव विदुति सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूप, तो स्वयं कृष्ण है, और वही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं जब हम नाम संकीर्तन करते हैं। कितनी विशेष ये कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, इसे हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप सोचेंगे यानी जहां भी कीर्तन होता है वहां प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु, नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं ऐसा नहीं है। जहां पे केवल भक्त द्वारा, शुद्ध भक्त द्वारा कीर्तन होता है। शुद्ध भक्त मतलब ये नहीं कि हम नित्य सिद्ध बन जाएं या सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर ले। शुद्ध भक्त मतलब कि हम अच्छे से बिना कोई भौतिक इच्छाओं के अगर हम भक्ति में लगते हैं, वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, तो उनको भी शुद्ध भक्त कहा जाता है। एक बार प्रभुपाद से किसने पूछा था कि आपके संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कितने मेंबर हैं हमारे संस्था में, कोई बोले शायद जो भी नंबर बोले होंगे प्रभु इतने शुद्ध भक्त हैं। यानी इस्कॉन में एक बार आ गए तो हम लोग शुद्ध भक्त एक तरह से हमें मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से पालन कर रहे हैं तो हम आज नहीं तो कल शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन हमें अच्छे से जो मार्ग दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति योग का, साधना भक्ति का, अगर हम इसको अच्छी तरह से पालन करें, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो शुद्ध भक्त का यह अर्थ नहीं है कि हम पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएं या हमें कोई कलमश ना हो। लेकिन शुद्ध भक्त का यह अर्थ, एक अर्थ ये भी है कि अगर हम शुद्ध भक्ति के पथ में हैं तब भी हम शुद्ध भक्त कहलाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन हमें पालन करना है जो आचार्य, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो वैसे शुद्ध भक्त जब हम अच्छी तरह से पालन करते हैं शुद्ध भक्ति का, और तब हम जब कीर्तन करते हैं तो उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। प्रोफेशनल कीर्तन जैसे आजकल है ना, कीर्तन मंडल बनते हैं, कीर्तन मंडली पैसा लेते हैं, इस्कॉन में ही बहुत है, सुन के आश्चर्य होता है मेरे को, कई भक्त हैं वो चार्ज करते हैं 11,000-51,000 कीर्तन के लिए। तो ऐसे कीर्तन में कभी भगवान प्रकट नहीं होंगे ना। या भागवत सप्ताह जहाँ पे 5,00,000-10,00,000 का चार्ज रहता है, वैसे भागवत सप्ताह वैसे कीर्तन में भगवान प्रकट नहीं होते। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम सुन के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो यहाँ बता रहे हैं भगवान नारायण उपस्थित होते हैं वो केवल तभी होते हैं जब शुद्ध भक्त, या कम से कम जो शुद्ध भक्ति के पथ में है वैसा व्यक्ति बिना भौतिक इच्छा के भगवान के प्रसन्नता के लिए जब कीर्तन करता है या भगवान का कथा सुनाता है, तब जाके भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। और वैसे कीर्तन में या वैसे कथा में अगर हम भाग लेते हैं तभी हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है, नहीं तो बस मनोरंजन होकर वापस आ जाते हैं। कई लोग हैं भागवत कथा में आते हैं हजारों संख्या में लोग, लेकिन उनका जीवन कितनों का परिवर्तन होता है, थोड़ा थोड़ा बस पुण्य मिलता है उनको बस। लेकिन जब शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं, शुद्ध भक्त कथा करते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। हालांकि लाखों की संख्या में लोग नहीं आए, बहुत कम आए, लेकिन उनका जीवन में परिवर्तन आता है। अब देखिए कई उदाहरण हैं जहां आप प्रभुपाद जी के जीवन में स्वयं देखिए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, टॉमकिन स्क्वायर पार्क, आज भी वो पार्क है, मैं तो वहां नहीं गया, लेकिन भक्त बताते हैं कि आज भी वहां वो पेड़ है, और पेड़ में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक साइन बोर्ड लगाया है कि यही वो पेड़ है जिसके नीचे स्वामी प्रभुपाद जी ने 1965 में या 66 में कीर्तन किया था, और हरे कृष्ण आंदोलन का शुरुआत इसी पेड़ से हुआ। तो ऐतिहासिक है प्रभुपाद जी, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। जब वो कीर्तन किए उन्होंने, जब सोचे 70 साल की उम्र में, माइक नहीं था उनके पास, कोई मृदंग बजाने वाला नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आज तो किसी को कीर्तन करने बोलते हैं तो उनको बोलते 4 भक्त चाहिए, मृदंग वाले, करताल वाले, हारमोनियम वाले। प्रभुपाद जी अकेले 70 साल की उम्र, माइक भी नहीं, एक छोटा सा ड्रम, आधा ड्रम, प्रभुपाद जी अकेले वो ड्रम बजा रहे थे, मृदंग भी नहीं, छोटा सा ढोलकी, ढोलकी प्रभुपाद जी अकेले ढोलकी बजा के क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई 10 बार ट्यून भी नहीं बदलते थे, जैसे आजकल कीर्तन में होता है ना 10 बार ट्यून बदलते हैं हर 5 मिनट में, ना कोई ट्यून बदलते थे, इसी एक ट्यून में लगातार 1 घंटा 2 घंटे प्रभुपाद जी 3 घंटे तक कीर्तन करते थे 70 साल की उम्र में बिना माइक के, सोची। और इस कीर्तन का प्रभाव देखिए, वहां जो भी लोग उपस्थित थे उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो साक्षात वहां कृष्ण प्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और वहां पे जो लोग थे उनके जीवन में प्रभाव आया और वो भक्त बने। ब्रह्मानंद प्रभु जो कुछ ही साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, वृंदावन में थे, वो वहां पे उठ के पहले नाचने वाले थे। प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट डांसर इन इस्कॉन। जब ऐसा कीर्तन हुआ तो अपने आप, प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, लेकिन क्योंकि कृष्ण प्रकट हो गए, ये प्रेम संकीर्तन, शुद्ध संकीर्तन जब प्रभुपाद जी ने किया तो अपने आप ब्रह्मानंद प्रभु खड़े होकर महाप्रभु की तरह ऐसे ऐसे हाथ हिला के नाचने लगे, बाकी भक्त खड़े हो गए, जो हिप्पी थे, जो बिल्कुल कुकर्म में लगे थे, वैसे लोग, पूरा पूरा उनका जीवन परिवर्तन हुआ, उन्होंने शुद्ध भक्ति का मार्ग को अपनाया, प्रभुपाद जी के शिष्य बने, अपने जीवन को समर्पित किए। और इतना ही नहीं, आगे वो जाके पृथ्वी के हर शहर शहर में जाके उन्होंने कीर्तन किया और उनके कीर्तन का भी वही प्रभाव हुआ। ये है परंपरा, ये है शुद्ध भक्ति। देखिए प्रभुपाद जी के जैसे कीर्तन से प्रभावित होके भक्त बने, और वो भक्त क्योंकि प्रभुपाद जी को पालन करते थे, उनके आज्ञा से गए, तो उनके कीर्तन का भी वैसा ही असर हुआ। उनके कीर्तन सुन के भी कई लोग भक्त बने। एक विष्णुजन महाराज थे, बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य, इतना अद्भुत कीर्तन करते थे, वो कीर्तन सुन के ही कई लोग इस्कॉन ज्वाइन किए। तो ये है प्रभाव शुद्ध भक्त का, बिना कोई भौतिक इच्छा के। अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करता है और सही नियम का पालन करता है, तब उससे कीर्तन में वो शक्ति होती है और तब कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं। ये चीज हमें बहुत ध्यानपूर्वक हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कीर्तन का प्रचार हम तो सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इस्कॉन का लक्ष्य यही है कि खुद हरिनाम करें और हरिनाम का प्रचार करें। लेकिन इसका वास्तविक असर तब होगा जब हम आचार और प्रचार दोनों करेंगे। जैसे आप सुने हरिदास ठाकुर की कथा, हरिदास ठाकुर को कहते हैं महाप्रभु कि कुछ लोग हैं जो, नहीं सनातन गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि कुछ लोग हैं जो बहुत सुंदर आचार करते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, बहुत वैराग्य भाव उनमें रहता है, लेकिन वो केवल अपना ही भजन करते हैं, भजन आनंदी, वो दूसरों को प्रचार में रुचि नहीं रखते। और कुछ लोग होते हैं वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आचरण नहीं रहता, खुद नियमों का पालन नहीं करते, खुद नाम जप अच्छे से नहीं करते, लेकिन नाम पे प्रवचन घंटों घंटों बोल देते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हमें आचार और प्रचार दोनों करने से ही यही वास्तव में सफलता इससे ही मिलती है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कुछ लोग आचार करते हैं प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं रहता, लेकिन आप नामाचार्य हैं क्योंकि आप दोनों करते हैं, आचार और प्रचार। सोचिए हरिदास ठाकुर से अच्छा कौन आचरण कर सकता है, 300,000 नाम जप करते थे और प्रचार, कितने लोगों को भक्त बना हरिदास ठाकुर। अब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी आकर्षित हुए हरिदास ठाकुर से, जो वैश्या आई थी उनको हरिदास ठाकुर ने भक्त बनाया, माया देवी दुर्गा जी भी स्वयं आई, उनको हरिदास ठाकुर ने कृष्ण महामंत्र दिया, पहले राम जी का नाम जप करती दुर्गा देवी। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर ने प्रचार भी बहुत किया नाम के बारे में। वो एक सभा थी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने बुलाया था, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, उसमें हरिदास ठाकुर नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। आपने सुना ही सब लीला सुना ही आपने कि कैसे उसमें फिर गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था, उसने जब सुना नाम की महिमा, हरिदास ठाकुर कह रहे कि मुक्ति नाम का लक्ष्य नहीं है, मुक्ति तो केवल एक बाई प्रोडक्ट है या साइड प्रोडक्ट, असली लक्ष्य तो नाम का हरिनाम का क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मुक्ति तो केवल एक शुद्ध नाम से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति कौन सी बड़ी बात है। तो जब वो गोपाल चक्रवर्ती ने सुना, बोला क्या, बहुत क्रोधित हो गया, बोला इतने सारे वेद उपनिषद, इतने हजारों श्लोक हैं, सब कहते हैं मुक्ति पाना कितना मुश्किल है, कितनी हजारों वर्ष तक योग साधना तप करना पड़ता है, और तुम कह रहे हो कि केवल एक हरिनाम से मुक्ति मिल जाए, मुक्ति तुच्छ है हरिनाम के सामने। तो उसने क्या कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा, और सबको हाहाकार मच गया। गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार तुरंत उसको भगा दिया वहां से, उनके कंपनी में जॉब करता था, बोले तुरंत फायर, गेट आउट, वहीं से निकाल दिया बाहर। और सबने बहुत माफी मांगा हरिदास ठाकुर से, इन हरिदास ठाकुर को फर्क नहीं पड़ा, उनमें कोई बात नहीं या ज्ञानी है, लेकिन हुआ क्या, किसकी नाक कट गई थोड़े दिन के बाद, उस गोपाल चक्रवर्ती की। बहुत सुंदर व्यक्ति था लेकिन कोढ़ रोग से उसका पूरा नाक पिघल गया। तो बोलने का मतलब हरिदास ठाकुर प्रचार भी करते थे हरिनाम की महिमा का और खुद जप भी करते थे, इसीलिए इतना प्रभावशाली था उनका प्रचार। तो ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए, जैसे हम ये पढ़े यहाँ पे कि कृष्ण प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, लेकिन तब जब शुद्ध भक्त, या कम से कम जो शुद्ध भक्ति का पालन करते हो वैसे भक्त जब कीर्तन करते हैं तब महाप्रभु प्रकट होते हैं। और बाकी तो आपके उदाहरण जानते ही हैं, खेतुरी ग्राम में जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, आपने सुना ये लीला कि जब 6 गोस्वामी चले गए संसार से, तो अगले जो आचार्य बने हमारे आंदोलन के, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, तो सब सारे भक्त बहुत दुखी थे क्योंकि महाप्रभु चले गए, सारे गोस्वामी चले गए। तो सारे भक्तों में फिर से उत्साह लाने के लिए, सारे भक्तों को एक करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक उत्सव का आयोजित किया। कहाँ पे? खेतुरी, जो कि उनका बचपन का गांव था नौतम दास ठाकुर। और वो तो घर छोड़ के चले गए थे, तो उनके जो भाई थे, उनके चाचा के लड़के जो अगले राजा बने वहाँ के, संतोष दत्त, तो उन्होंने सारा स्पॉन्सर किया, पूरा फेस्टिवल को बहुत अच्छे से उन्होंने आयोजित किया उत्सव को, और बहुत सुंदर उत्सव हुआ। सारे भक्त आए, जाह्नवा माता और जितने महाप्रभु के पार्षद बचे थे सब जगह जगह से, बंगाल से, उड़ीसा से, सब इकट्ठे हुए खेतुरी ग्राम में, और बहुत सुंदर उत्सव बनाया गया। कई सारे मूर्तियों की स्थापना हुई और बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और फिर अंत में उत्सव में क्या कि नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर कीर्तन गाना शुरू किया। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, उनका जो कीर्तन शैली है उनका नाम है गरन हाटी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर कीर्तन। और जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करना शुरू किए, कीर्तन चलता गया, एक घंटा, दो घंटा, कई घंटों तक कीर्तन चलता गया। धीरे धीरे भक्तों का उत्साह बढ़ता गया और इतने उत्साह के साथ भक्त लोग कीर्तन किए, इतने भक्ति के साथ, कि अंत में पंच तत्व स्वयं प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, षड़ गोस्वामी, सब के सब वहाँ प्रकट हो गए। साक्षात सबने दर्शन किया, वहाँ प्रकट होकर सब नित्य कीर्तन करने लगे। जाह्नव माता ने फिर से नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, सारे भक्तों ने महाप्रभु के दर्शन किए। सोचिए कितना आनंद होगा, कितना उत्साह होगा, सबने जोर से कीर्तन किया। ऐसे कीर्तन चलता रहा, फिर अंत में फिर से महाप्रभु और सारे पार्षद वापस से अंतर्धान हो गए और फिर सारे भक्त मूर्छित हो गए। तो ये है संकीर्तन का, जैसे हम ये श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, कई बार तो साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन जब किया था तो प्रकट हुए थे। बाकी समय अगर शुद्ध भक्त कीर्तन करते वो निश्चित वहाँ पे प्रकट होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट दर्शन भले ही नहीं कर पाए, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि चार स्थान था जहाँ महाप्रभु हमेशा प्रकट होते थे, हाँ, सची माता के आंगन में, राघव पंडित जहाँ कीर्तन करते थे, सॉरी रंधन करते थे उनके रसोई में, और श्रीवास ठाकुर के कीर्तन में, और नित्यानंद प्रभु के नित्य में। तो श्रीवास आंगन में जब भी कीर्तन होता था वहाँ महाप्रभु साक्षात प्रकट होते थे। कई बार चैतन्य चेतामृत में वर्णन है जब अच्छा कीर्तन होता था तो महाप्रभु स्वयं वहाँ पे प्रकट हो जाते थे। तो हमें आज भी सोचना चाहिए, अभी भी जब शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं तो अवश्य महाप्रभु वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये बहुत आवश्यक है हम सबके लिए कि आचार और प्रचार दोनों करेंगे तभी कीर्तन का हमारा लाभ होगा। एक और सुंदर ऐसी चैतन्य चेतामृत में एक प्रसंग आता है कि महाराज प्रताप रुद्र, आप जानते हैं महाराज प्रताप रुद्र बहुत महान भक्त थे, तो लेकिन जब वो स्टार्टिंग में जब महाप्रभु वहाँ आए पुरी में तो ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उनको बहुत आकर्षण हुआ महाप्रभु से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, जो उनके राज पंडित थे, उनको ने बताया कि आप मुझे बताइए महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के भक्तों के बारे में। तो अपने महल के ऊपर जाके सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र खड़े हो गए। आप जानते जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही है उनका महल। तो वहाँ से सारे महाप्रभु के भक्त लोग आ रहे थे बंगाल से, हर साल बंगाल से सारे महाप्रभु के भक्त लोग आते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए और रथ यात्रा में कीर्तन करते थे, चार महीने तक पुरी में रहते थे। तो उस समय महाराज प्रताप ने देखा सारे भक्तों को, इतना सुंदर कीर्तन, हाँ वैसे तो पुरी में बहुत सारी कीर्तन मंडलियाँ आती हैं, बहुत कीर्तन होता है, लेकिन जब महाप्रभु के भक्तों का उन्होंने कीर्तन देखा तो एक विशेष आकर्षण हुआ। प्रसाद पुत्र ने कहा कि आज तक मैंने बहुत कीर्तन मंडली देखा लेकिन ऐसा कीर्तन मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक दो श्लोक पढ़ के आपको सुनाता हूं, ये मध्य लीला के 11वें अध्याय में आते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य सबका इंट्रोडक्शन देते हैं, सबका परिचय कराते हैं, ये कुलिंग ग्राम के भक्त हैं सत्यराज खान, रामानंद, ये रघुनंदन है, सुलोचन है। तो कहते हैं कि कौते को कहे भाई देखो यत जन चैतन्य रगण सब चैतन्य जीवन, कहते हैं मैं कितने भक्तों के बारे में बताऊंगा, ये सब चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं जिनका प्राण चैतन्य महाप्रभु। फिर राजा ने कहा, राजा कहे देखी मोर हईल चमत्कार, वैष्णवर ऐसे तेज देखी नहीं यार। कहते हैं कि मेरे को इनको देख के परम आश्चर्य हो रहा है, परम चमत्कार, ऐसा तेज मैंने कभी भक्तों में आज तक नहीं देखा। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरण, कभू नहीं सुनी ए मधुर कीर्तन। कहते हैं कि उनका जो तेज है उनका शरीर से, वो किसके समान है? कोटि सूर्य के समान उनका उज्ज्वल शरीर है, और इतना मधुर कीर्तन मैंने कभी नहीं सुना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते हैं उनका यही लक्षण होता है, वो तेजस्वी बनते हैं, तेजस्वी प्रतीत होते हैं, और उनका कीर्तन की तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ दो लाइन। देर आर मेनी प्रोफेशनल चैंटर्स हु कैन परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग विद वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन एन आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वे, बट देयर चैंटिंग कैन नॉट बी एज अट्रैक्टिव एज अ कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ प्योर डिवोट। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल, क्या कहेंगे हिंदी में, जो हाँ पेशा, जिनका पेशा है कीर्तन करना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पेशा है कीर्तन करना, जो अपना शरीर, जो अपना परिवार चलाते हैं कीर्तन करके, बहुत सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन उनका कीर्तन उतना आकर्षित नहीं होता जितना शुद्ध भक्तों का कीर्तन होता है। इसने बताया ना, प्रभुपाद जी टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जो कीर्तन किए, तो उनके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, माइक नहीं था, केवल एक छोटा सा ढोलकी था, लेकिन वो क्यों आकर्षित हुआ, लोग क्यों आकर्षित हो गए, उनके शुद्धता के वजह से। प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त, तो भक्ति द्वारा लोग आकर्षित हुए। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भक्त अच्छी तरह से नियमों का पालन करेगा, वैष्णव आचरण करेगा, तो निश्चित रूप से उसका भी शरीर वैसे ही तेजस्वी बन जाएगा, और जब वो कीर्तन करेगा या भगवान का कथा सुनाएगा, तो लोग निश्चित रूप से आकर्षित होंगे और उनके जीवन में परिवर्तन होगा। हमारा ये लक्ष्य नहीं केवल लोगों को आकर्षित करना, नहीं, उनके जीवन में परिवर्तन लाना। तो अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हम अच्छे से वैष्णव आचरण करें और नियमों का पालन करें, और अगर हम कीर्तन करते हैं और कथा सुनाते हैं, तो निश्चित रूप से लोग हमसे आकर्षित होंगे और भक्त बन जाएंगे। फिर दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, ड्रामा, कहते हैं ड्रामा भी भक्तों द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं हम प्रोफेशनल लोगों को बुला के ड्रामा करें, प्रभुपाद जी कहते हैं उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दो चीज हमें हमेशा याद रखना है, कि हमारे इस्कॉन आंदोलन में कीर्तन भी भक्तों को ही करना चाहिए, कोई पेशा वाले कीर्तन को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, और ड्रामा भी भक्तों द्वारा ही होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल एक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है, इस्कॉन में भी कई कथा में देखते हैं कोई प्रोफेशनल म्यूजिक वाले आते हैं, तो ये सब गलत है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा के खिलाफ है। और फिर राजा प्रताप रुद्र आगे कहते हैं, ऐसे प्रेम ऐसे नित्य ऐसे हरिध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐसे कहीं नहीं सुनी। कहते हैं आज तक मैंने ऐसा नित्य, ऐसा कीर्तन, ऐसा हरिध्वनि कभी नहीं सुना। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज प्रताप रुद्र तो पुरी के राजा थे, कई सारे संकीर्तन मंडली आते होंगे, कई सारे गायक आते होंगे, लेकिन प्रताप रुद्र आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए इन महाप्रभु के भक्तों का, जब उन्होंने कीर्तन देखा। यूनिक, बहुत विशेष कीर्तन था ये। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे हमारे इस्कॉन के भक्तों को भी ऐसा ही कीर्तन करना चाहिए, ताकि सब लोग आकर्षित हो जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं मायापुर धाम में महाप्रभु के जन्म उत्सव में ऐसे ही सारे भक्तों मूल के कीर्तन करना चाहिए, कि सारे बड़े बड़े लोग दुनिया के आकर्षित हो, जैसे महाराज प्रताप रुद्र आकर्षित हो गए भक्तों का कीर्तन देख के। फिर भट्टाचार्य कहते हैं सार्वम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, भट्टाचार्य कहे मधुर वचन चैतन्य रसिष्ठि ए प्रेम संकीर्तन। फिर कहते हैं सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं, हे राजन ये साधारण कीर्तन ही है, क्या कीर्तन है? प्रेम संकीर्तन। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो कीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग, हमारा कीर्तन साधारण कीर्तन ये क्या है? प्रेम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो कई लोग कहते हैं ना कीर्तन तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि हरिनाम पहले नहीं था, लेकिन महाप्रभु की विशेषता क्या है, वो प्रेम संकीर्तन लाए, जो गोलोक वृंदावन का जो प्रेम संकीर्तन है उसको लेके इस धरा भूमि में चैतन्य महाप्रभु लेके आए। इसलिए बाकी लोगों के कीर्तन में और महाप्रभु के अनुयायी जब कीर्तन करते हैं उसमें अंतर है। फिर कहते हैं अवतरी चैतन्य कैला धर्म प्रचारण कलिकाल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कहते हैं यही नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन सहित सुमेधार कलि हत जन। फिर कहते हैं किस संकीर्तन यज्ञ द्वारा जो महाप्रभु की आराधना करते हैं वही वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं, सुमेधा यानी बुद्धिमान लोग हैं। बाकी सब क्या है, कलिहत, बाकी सब कलियुग के द्वारा प्रभावित है, ऐसा जो नहीं करता। तो इसमें भी प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि मनुष्य अपने आप धर्म का निर्माण नहीं कर सकते, धर्म तो शास्त्र द्वारा दिया गया है। विशेष करके कलियुग में युग धर्म क्या है, काली काल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। और विशेष करके जो 11वां स्कंध 5वां अध्याय 32वां श्लोक जो आज के तात्पर्य में प्रभुपा जी बता रहे, वो कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है, कम से कम ये सारे भक्तों को श्लोक याद होना चाहिए, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। हम सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु का। ये तो लोग हमें बोलेंगे आप चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, कहाँ प्रमाण है कि वो कृष्ण है, ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम का। भागवतम में कहा है स्पष्ट कि कलयुग में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, किस रूप में, द्विषा अकृष्ण। कृष्ण का रंग क्या है, सांवला, उसका उल्टा रंग क्या है, गोरा। तो कृष्ण गौर रूप में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम मतलब जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं या कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो महाप्रभु हर समय क्या करते थे, कृष्ण का नाम और कृष्ण का गुणगान करते, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और अपने साथ सारे पार्षद को लेके आए हैं। और अस्त्र, अस्त्र क्या है महाप्रभु का, तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि महाप्रभु का अस्त्र क्या है, उनका सौंदर्य। और हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही है, उनका सौंदर्य भी उनका अस्त्र है। जैसे बाकी जो अवतार हैं वो अलग अलग अस्त्र लाते हैं, चक्र गदा और असुर का वध करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी असुर का वध किया नहीं। वो क्योंकि कलयुग में अगर वो असुर का वध करते तो सबका वध करना पड़ता। जैसे जगाई मधाई की लीला में नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम पतित आत्माओं का वध करने नहीं आए, क्योंकि कलयुग में सभी पतित हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन पतित आत्माओं का उद्धार करना है। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई बार। तो महाप्रभु ने सबका उद्धार किया, जो हमारे हृदय के अंदर जो राक्षस है उसका वध किया महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन द्वारा और अपने सौंदर्य द्वारा। कहते हैं महाप्रभु का सौंदर्य उनका अस्त्र था, उनके सुंदरता से लोग आकर्षित होते थे और उनके महामंत्र के कीर्तन द्वारा। तो सांग पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षद के साथ आते थे, आए हैं महाप्रभु। और यज्ञ संकीर्तनर प्राय, संकीर्तन यज्ञ करने महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और उनकी पूजा कैसे की जाएगी, जैसे होता है ना पूजा की विधि, पूजा कैसे करें, ये सामग्री दो, ऐसे ये मंत्र करो, ऐसे पूजा करो, लेकिन महाप्रभु का पूजा करने का केवल एक ही उपाय है, क्या है, यज्ञ संकीर्तनर प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो महाप्रभु को अगर पूजा करना है तो उसका एकमात्र विधि क्या है, नाम संकीर्तन, संकीर्तन द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा मंदिर या कोई बहुत महाप्रभु की मूर्ति स्थापना करके बड़ा बड़ा अभिषेक, या ठीक है ये सब से प्रसन्न होते हैं महाप्रभु, लेकिन ये सब मुख्य नहीं है। मेन क्या है, संकीर्तन द्वारा। अगर हम ये सब करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर संकीर्तन यज्ञ नहीं करें तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। महाप्रभु केवल प्रसन्न होते हैं संकीर्तन यज्ञ द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसके कहते हैं कि इसलिए हमें इस कलयुग में विशेष रूप से संकीर्तन द्वारा ही, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ करने की, केवल संकीर्तन एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे उस समय, आजकल इतना नहीं हो रहा है कीर्तन, लेकिन पहले खैर हमारे वृंदावन में तो 24 घंटे कीर्तन होता है, लेकिन उस समय इस्कॉन जब शुरू हुआ था, जब प्रभुपाद जी थे, तो सारे भक्त घंटों घंटों जाके बाहर नगर कीर्तन करते थे सुबह से शाम तक। तो वास्तव में हमें संकीर्तन अधिक से अधिक करना चाहिए। संकीर्तन मतलब दोनों, नाम जप और सबके सामने जो सामूहिक कीर्तन, तो दोनों केवल यही मात्र उपाय है जिसके द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु का उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये श्लोक में कहते हैं इसके द्वारा क्या लाभ होगा कि हम सब किससे मुक्त हो जाएंगे, वैर की भावना से, एनवी, क्योंकि इस संसार में हम सब शिकार हैं किसके, जो सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह। और कई बार लोग काम से भी काम को जीत लेते हैं या क्रोध को या लोभ को, लेकिन मत्सर्य को जीतना बहुत मुश्किल है, एनवी, ईर्ष्या भावना। कई कई बार बड़े बड़े लोगों में, संतों में या भक्तों में भी ईर्ष्या की भावना, ये वैर की भावना होती है, लेकिन इसको जीतने का एकमात्र उपाय भी संकीर्तन यज्ञ है। इसके पिछले श्लोक में कहते हैं ना, कहें कि ऐसे संकीर्तन द्वारा क्या होता है, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं और वो एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं ना किसी कुंठा या भय के ग्रस्त होते हैं। तो निर्वैर जो भावना है, नॉन एनवियसनेस, ये संकीर्तन द्वारा आता है। जब हम सब मिलके कीर्तन करते हैं तो फिर हम एक दूसरे से वैर भावना से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कीर्तन किए, जब वो पुरी से वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान किए, तो झारखंड जंगल होके महाप्रभु वहां से वो गुजरे थे वहां से। तो जब झारखंड के जंगल में थे वो, तो क्या किए, जब वो संकीर्तन किया तो क्या हुआ, उस समय सारे शेर और हिरण ये सब एक साथ कीर्तन किए, एक साथ नित्य कीर्तन किए। आप वैसे साधारणतः देखेंगे तो शेर और हिरण क्या दोनों अच्छे दोस्त हैं? नहीं, शेर तो तुरंत हिरण को देखते ही तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन शेर और हिरण भी एक साथ नित्य कीर्तन किए। तो ये इतनी सुंदर बात है, ऐसा प्रवचन में कहते हैं, मैंने सुना है, राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब शेर और हिरण भी एक साथ जब कीर्तन करने से उनके अंदर वैर खत्म हो गया, तो मनुष्य के बीच में कैसे वैर रह सकता। अगर हम सब मिलके एक बार अच्छे से कीर्तन करेंगे तो भक्तों के बीच में भी जो भी अंतर आता है या वैर की भावना होती है या कुछ भी आपस में झगड़ा होता है, सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम सब मिलके अच्छे से संकीर्तन करें। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक बार जब ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ भक्तों में कुछ डिफरेंस था, प्रभुपाद जी कहते मिलके कीर्तन करो, मिलके कीर्तन करने से, मिलके कृष्ण कथा सुनने से सारे हमारे आपस में जो भी मतभेद हैं वो सब दूर हो जाते हैं, भक्तों में एकता बढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये आज का श्लोक है। और ये जो पूरा प्रसंग चल रहा है, प्रचेता जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारायण की सेवा की जाती है और निर्वैरता की भावना इसी प्रकार ला सकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सन्यासी होते हैं, मायावादी सन्यासी, वो एक दूसरे को नारायण बुलाते हैं, तो वो तो नारायण से ही वैर कर रहे हैं, क्योंकि जो वैर है या जो ईर्ष्या है उसका मूल कारण क्या है, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या। क्योंकि कृष्ण के प्रति हमें ईर्ष्या है इसलिए हम बाकी लोगों से भी ईर्ष्या करते हैं, और यही मुख्य कारण है कि हम इन संसार में फंसे हैं, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति हमारी ईर्ष्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगते हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ जब हम करते हैं तो जैसा यहां तात्पर्य में समझाया प्रभुपाद जी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं और हमारे हृदय से सारे कलमश दूर हो जाते हैं, यहां तक कि वैर की भावना भी हमारे मन से खत्म हो जाती है। तो ये महत्व है संकीर्तन यज्ञ का, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, इसलिए हमें अच्छे से आचरण भी करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। अगर हम इसी भाव से कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से महाप्रभु उस कीर्तन में प्रकट होंगे। ऐसा फिर से मैं ये लाइन पढ़ता हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान और नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। कोई कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।